एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। तो आज हम एक ऐसी किताब पर बात कर रहे हैं जिसने अपने समय में काफी हलचल मचाई थी, फ्रांसिस ट्रूलोप की डोमेस्टिक मैनर्स ऑफ द अमेरिकन्स।
हाँ, ये 19वीं सदी की शुरुआत में एक ब्रिटिश महिला का नजरिया है अमेरिका के उस वक्त के बिल्कुल नए लोकतंत्र और समाज पर, और नजरिया भी काफी तीखा था।
बिल्कुल, निर्मम कह सकते हैं, लेकिन ये आज भी दिलचस्प है ना, क्योंकि ये सिर्फ कोई पुरानी कहानी नहीं है।
सही बात है, ये किताब आज भी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि भाई लोकतंत्र के जो ऊंचे ऊंचे आदर्श होते हैं और रोजमर्रा की जो हकीकत होती है उसमें कितना फासला हो सकता है।
और क्या सामाजिक बराबरी हमेशा मतलब सांस्कृतिक तौर पर बेहतरी लाती है? ये सवाल भी उठता है
तब जब दुनिया उसे थोड़ी शक की निगाह से देख रही हो। चलिए इसी विवादास्पद लेकिन जरूरी नजरिए को थोड़ा और समझते हैं।
तो पहले ये जान ले कि ये फ्रांसिस ट्रूलोप थी कौन। 1779 में जन्मी एक अंग्रेज मध्यवर्गीय महिला थी
और बाद में जाकर एक सफल लेखिका भी बनी। उनके बेटे एंथनी ट्रूलोप तो बहुत मशहूर उपन्यासकार हुए।
हाँ, लेकिन जब वो अमेरिका गई 1827 में, उस वक्त वो मतलब आर्थिक तौर पर काफी परेशान थी। असल में अपना भाग्य आजमाने गई थी वहाँ,
और यही बात उनके नजरिए को खास बनाती है। वो सिर्फ एक टूरिस्ट की तरह नहीं गई, वो लगभग 3.5 साल रही अमेरिका में,
ज्यादातर सिनसिनेटी ओहायो में, जो उस वक्त एक उभरता हुआ तेजी से बसता हुआ फ्रंटियर शहर था, मतलब पश्चिमी सीमा पर एक नया शहर।
हाँ, और उन्होंने वहाँ एक बड़ा फैंसी सा स्टोर खोलने की भी कोशिश की, ट्रूलोप्स बाजार, लेकिन वो चला नहीं, बुरी तरह फेल हो गया।
बिल्कुल, तो सोचिए जरा, एक तरफ तो वो यूरोपीय तौर तरीकों की आदि और दूसरी तरफ अमेरिकी सीमांत जीवन की वो अनौपचारिकता, वो बराबरी वाला माहौल और थोड़ी कच्ची पक्की सी व्यवस्था।
तो ये जो सीधा अनुभव था, जमीनी अनुभव, इसने उन्हें एक अलग ही नजरिया दिया होगा।
हाँ, एक ऐसा नजरिया जो शायद किसी और को ना मिलता। वो बाहरी भी थी और किसी हद तक अंदरूनी भी, लेकिन हाँ, कहना होगा नजरिया बहुत आलोचनात्मक था।
तो ये किताब है क्या? ऊपर से देखें तो एक यात्रा का ब्यौरा लगती है, लेकिन असल में ये उस वक्त के अमेरिकी समाज की एक तीखी सांस्कृतिक आलोचना है।
और उन्होंने खास तौर पर घरेलू शिष्टाचार पर ध्यान दिया, मतलब रोजमर्रा की बातें, लोग घर पर कैसे रहते हैं, बातचीत कैसे करते हैं, खाते पीते कैसे हैं,
मिलते जुलते कैसे हैं, बिल्कुल छोटी छोटी चीजें।
और इन्हीं छोटी बातों से वो एक बड़ा तर्क बनाती हैं। उनका मानना था कि अमेरिका का जो लोकतंत्र और बराबरी का सिद्धांत है वो ठीक है, राजनीतिक तौर पर शायद अच्छा हो,
लेकिन
उसने सांस्कृतिक रूप से एक ऐसा समाज बना दिया है जो अपरिष्कृत है, जिसमें गंभीरता की कमी है और जो बौद्धिक रूप से ज्यादा विकसित नहीं है।
अच्छा, तो उनका तर्क ये था कि समाज में ऊंच नीच या वर्ग भेद न होने से लोगों में बेहतर बनने का प्रोत्साहन ही खत्म हो गया।
हाँ बिल्कुल, जैसे ज्यादा सभ्य दिखने या कला साहित्य में रुचि लेने की कोई वजह ही नहीं बची, सब एक औसत स्तर पर आ गए।
ये तो बड़ा असहज सवाल उठा रही थी वो, कि क्या सामाजिक बराबरी का मतलब सांस्कृतिक साधारणता है?
और ये किताब उन्होंने लिखी भी खासकर ब्रिटिश पाठकों के लिए कही, जो अमेरिका के इस महान लोकतांत्रिक प्रयोग को बड़ी उत्सुकता से और थोड़े शक से भी देख रहे थे।
तो उन्होंने अमेरिका की वो रोमांटिक छवि तोड़ी जो शायद यूरोप में बन रही थी, और एक ज्यादा कठोर जमीनी हकीकत सामने रखी। खान पान, बातचीत के तरीके, महिलाओं की स्थिति, धर्म का जुनून और हाँ, गुलामी, इन सब पर खुलकर लिखा।
चलिए अब उनके कुछ मुख्य अवलोकनों को थोड़ा और करीब से देखते हैं। शुरुआत उनके सिनसिनाटी के अनुभव से करें।
हाँ, करती हैं। वो लिखती हैं कि सिनसिनाटी उन्हें सांस्कृतिक रूप से रेगिस्तान जैसा लगा, लोगों का सारा ध्यान बस पैसा कमाने पर,
कला साहित्य संगीत गहरी बातचीत, इन सब के लिए जैसे कोई जगह ही नहीं थी।
और उन्हें यूरोपीय समाज के जो तय शिष्टाचार थे और अमेरिकी समाज की जो खुली अनौपचारिकता थी, उसके बीच का अंतर बहुत ज्यादा खटकता था।
वो मैं तुम्हारे जितना ही अच्छा हूँ वाले रवैये की बहुत आलोचना करती हैं। उन्हें लगता था कि इससे इज्जत और सीखने की इच्छा दोनों खत्म हो जाती है।
कोई किसी से बेहतर बनने की कोशिश क्यों करेगा अगर सब बराबरी है, ये उनका पॉइंट था।
रोजमर्रा की जिंदगी के उनके वर्णन भी काफी दिलचस्प है। वो बताती हैं कि खाना बहुत तेजी से खाया जाता था और लगभग खामोशी में।
अच्छा, बातचीत नहीं होती थी खाने के समय?
बहुत कम,
और सामाजिक समारोह में मर्द एक तरफ व्यापार और राजनीति की बातें करते थे, और हाँ, वो पुरुषों के तंबाकू चबाकर थूकने की आदत से तो बहुत ही ज्यादा चिढ़ती थी। इसका जिक्र बार बार करती हैं।
ओह,
और महिलाएं वो क्या करती थी?
वो दूसरी तरफ घरेलू गपशप में लगी रहती थी, और नौकर जिन्हें वहां हेल्प कहते थे वो खुद को नौकर मानते ही नहीं थे। उनका रवैया अक्सर बेरुखा सा होता था।
ये सब एक यूरोपीय महिला के लिए काफी अजीब रहा होगा।
बिल्कुल। अब सामाजिक रीति रिवाज और महिलाओं की स्थिति पर उनकी टिप्पणियां देखते हैं। खाने पीने की आदतों पर वो काफी कुछ लिखती हैं।
हाँ, मैंने सुना है। क्या कहती हैं?
कहती है कि अमेरिकी बेकन और मांस बहुत ज्यादा खाते हैं, सुबह दोपहर रात हर समय, और छुरी का इस्तेमाल हर चीज के लिए करते हैं, यहाँ तक कि मटर खाने के लिए भी।
छुरी से मटर? ये तो वाकई अजीब है।
उन्हें ये बड़ा गंवारू लगता था, और खाने के दौरान बातचीत ना होना ये उन्हें खास तौर पर अखड़ता था। ये उनके लिए सामाजिकता की कमी का प्रतीक था।
और महिलाओं की स्थिति पर उनका क्या कहना था?
उनका नजरिया थोड़ा जटिल है। वो मानती हैं कि ऊपरी तौर पर तो महिलाओं को सम्मान दिया जाता है, पुरुष जैसे उनकी रक्षा करते दिखते हैं,
लेकिन पुरुषों की बौद्धिक और सार्वजनिक दुनिया से बिल्कुल अलग रखा जाता था।
उनकी शिक्षा भी, वो कहती हैं, बस नाम मात्र की होती थी। थोड़ा गाना बजाना, थोड़ी पेंटिंग सीख ली, हो गया।
हाँ, गहरी समझ या आलोचनात्मक सोच विकसित करने पर कोई जोर नहीं। उनका जीवन घर, चर्च और दूसरी महिलाओं के साथ गपशप तक ही सिमटा हुआ लगता था।
और ट्रुलोप को तो यहाँ तक लगता था कि महिलाओं का धर्म के प्रति जो इतना ज्यादा झुकाव था, वो असल में उनके बौद्धिक और भावनात्मक रूप से खाली जीवन का ही नतीजा था।
और धर्म की बात आई है तो अमेरिकी धार्मिकता, खासकर उस समय के जो इंजीलवादी आंदोलन थे, मतलब वो प्रोटेस्टेंट ईसाई आंदोलन जो व्यक्तिगत अनुभव और धर्म प्रचार पर जोर देते थे, उनसे तो ट्रुलोप बुरी तरह हैरान थी।
हाँ, वो कैंप मीटिंग्स का जिक्र करती हैं ना। हाँ, बड़ी बड़ी धार्मिक सभाएं।
बिल्कुल। और उनका वर्णन वो ऐसे करती हैं जैसे वो कोई सामूहिक पागलपन हो। लोग चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, जमीन पर लोट रहे हैं, बेहोश हो रहे हैं।
बाप रे।
वो इसे सच्ची भक्ति नहीं मानती थी, बिल्कुल नहीं। वो इसे भावनाओं का शोषण और एक तरह की अवैज्ञानिक कट्टरता मानती थी।
और इसकी तुलना वो इंग्लैंड के चर्च के शांत व्यवस्थित माहौल से करती थी। उन्हें लगता था कि ये धार्मिक उन्माद अमेरिकी समाज के सांस्कृतिक और बौद्धिक खालीपन का ही एक लक्षण है।
मतलब लोगों के पास सोचने या महसूस करने के लिए कुछ बेहतर नहीं था, तो वो इसी भावनात्मक उबाल में बह जाते थे, ऐसा उनका मानना था।
अच्छा, फिर सिनसिनाटी में जब उनका बिजनेस नहीं चला तो वो पूरब की तरफ गईं, ज्यादा बसे हुए शहरों में।
हाँ, बाल्टीमोर, फिलाडेल्फिया, वॉशिंगटन DC, न्यूयॉर्क, यहाँ उन्हें सिनसिनाटी के मुकाबले थोड़ा ज्यादा परिष्कार दिखा, समाज थोड़ा बेहतर लगा।
लेकिन यूरोपीय मानकों के हिसाब से अभी भी कम ही था।
हाँ, अभी काफी कम, और पैसे और व्यापार का जुनून यहाँ भी उतना ही हावी था।
यहाँ उन्होंने एक और बड़ी दिलचस्प बात नोट की, जिसे वो जनमत का अत्याचार कहती हैं, टिरेनी ऑफ पब्लिक ओपिनियन।
ये क्या था?
उनका मानना था कि अमेरिका में कहने को तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता थी, पर असल में लोगों पर बहुमत की राय के साथ चलने का भारी दबाव था। लोग खुलकर अपनी सच्ची राय रखने से डरते थे कि कहीं वो भीड़ से अलग न दिखें।
अरे,
इसका नतीजा क्या होता था? नतीजा, बातचीत अक्सर सतही और उबाऊ हो जाती थी, क्योंकि कोई भी ऐसा विचार रखने का जोखिम नहीं उठाना चाहता था जो शायद दूसरों को पसंद ना आए।
ये तो सोचने वाली बात है। और राजधानी वॉशिंगटन DC के बारे में क्या कहा?
उन्हें वो एक अधूरा और बेजान शहर लगा, और राजनेता, यहाँ तक के उस समय के राष्ट्रपति एंड्रू जैक्सन भी, उन्हें यूरोपीय नेताओं के मुकाबले कम प्रभावशाली और अपरिष्कृत लगे।
और न्यूयॉर्क?
न्यूयॉर्क उन्हें ऊर्जावान लगा, लेकिन पूरी तरह से व्यावसायिक, कला संस्कृति के मामले में पिछड़ा हुआ।
और किताब के आखिर में वो एक बहुत गंभीर मुद्दे पर आती हैं, गुलामी।
हाँ, और इस पर उनकी आवाज सबसे ज्यादा बुलंद और नैतिक लगती है। वर्जीनिया और मैरिलैंड में जो उन्होंने देखा, उसके आधार पर वो गुलामी को अमेरिका का सबसे बड़ा नैतिक पतन और पाखंड मानती हैं।
वो साफ कहती हैं कि यह अमेरिका के स्वतंत्रता और समानता के दावों का खुला मजाक है।
और वो इसके क्रूर प्रभावों का वर्णन करती हैं, कैसे परिवार तोड़े जाते हैं, कैसा अमानवीय व्यवहार होता है। शायद ये एकमात्र ऐसा पहलू है जहाँ उनकी आलोचना सिर्फ तौर तरीकों पर नहीं, बल्कि सीधे सीधे नैतिकता पर चोट करती है।
तो अगर हम इस पूरी बातचीत से कुछ मुख्य संदेश या थीम्स निकालने की कोशिश करें, तो सबसे पहला क्या होगा?
मेरे ख्याल से सबसे पहला और सबसे विवादास्पद तो वही है, लोकतांत्रिक समानता और सांस्कृतिक परिष्कार के बीच का तनाव।
ट्रॉलप का वो पक्का यकीन कि सबको बराबर करने से अनजाने में कला, शिष्टाचार और बौद्धिक गहराई के मानक नीचे आ जाते हैं।
हाँ, ये बाकी एक असहज सवाल है। दूसरा?
दूसरा, अमेरिकी समाज का वो अत्यधिक भौतिकवाद और व्यावहारिकता कि पैसा कमाना ही सबसे बड़ा लक्ष्य है, हर चीज का मोल उसकी कीमत से है, कला, साहित्य, गहरी सोच, इन सब के लिए जगह कम है।
और ये बात मतलब आज भी कहीं ना कहीं सच लगती है, सिर्फ अमेरिका में ही नहीं।
बिल्कुल। तीसरा, वो जनमत का अत्याचार वाली बात, कहने को आजादी पर असल में बहुमत का इतना दबाव कि लोग अलग सोचने या बोलने से डरें, सच्ची बौद्धिक स्वतंत्रता दब जाए।
ये तो आज सोशल मीडिया के जमाने में शायद और भी ज्यादा सच लगता है ना।
हाँ बिल्कुल। चौथा, महिलाओं की वो विरोधाभासी स्थिति, ऊपर से सम्मान पर असल में सीमित बौद्धिक दायरा और समाज में कम प्रभाव, वो सुनहरे पिंजरे वाली बात।
पांचवा, धार्मिक उत्साह का वो भावनात्मक और अवैज्ञानिक चरित्र जिसे ट्रॉलप सांस्कृतिक खालीपन का लक्षण मानती थी, तर्क से ज्यादा भावनाओं का जोर।
और छठा और शायद सबसे शक्तिशाली नैतिक बिंदु, गुलामी की वो गहरी अनैतिकता जो अमेरिका के सारे आदर्शों को खोखला कर देती थी, उनके लिए ये सबसे बड़ा विरोधाभास था।
फ्रैंक ट्रॉलप की लिखने की शैली भी काफी सीधी और बेबाक है, कुछ वाक्य तो एकदम यादगार हैं।
हाँ, जैसे वो एक वाक्य जो शायद पूरी किताब का निचोड़ ही है, मुझे वे पसंद नहीं है, मुझे उनके सिद्धांत पसंद नहीं है, मुझे उनके तौर तरीके पसंद नहीं है, मुझे उनकी राय पसंद नहीं है। कितना साफ कहा है,
कोई लाग लपेट नहीं। या जब वो अमेरिकी बराबरी पर कहती हैं, ये मैं तुम्हारे जितना अच्छा हूँ वाली भावना परिष्कार की प्रगति में बाधा है।
हाँ, ये साफ दिखाता है कि वो समाज में एक तरह की दंगी व्यवस्था को जरूरी मानती थी ताकि लोग बेहतर बनने की कोशिश करें।
और रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा वो खाने वाला उदाहरण, वे असामान्य मात्रा में बेकन खाते हैं, हैम और बीफ स्टेक सुबह, दोपहर और रात दिखाई देते हैं। कैसे वो छोटी चीजों से बड़े सांस्कृतिक निष्कर्ष निकाल लेती थी।
अब सवाल ये है कि लगभग 200 साल पुरानी और साफ तौर पर एक आलोचनात्मक, यहाँ तक कि पक्षपाती नजरिए से लिखी किताब से आज हम क्या सीख सकते हैं।
मुझे लगता है सबसे बड़ी सीख तो सांस्कृतिक पूर्वाग्रह को समझना है। ट्रॉलप का काम हमें एक तरह से आईना दिखाता है।
कैसे?
कि हम सब कैसे अपनी संस्कृति अपनी पृष्ठभूमि के चश्मे से ही दूसरी संस्कृतियों को देखते हैं, आंकते हैं। जब हमें किसी और का रिवाज अजीब या गलत लगता है तो ये किताब हमें रुककर सोचने पर मजबूर करती है कि कहीं ये हमारा अपना पूर्वाग्रह तो नहीं।
सही बात है। और ये लोकप्रिय संस्कृति बनाम अभिजाते संस्कृति वाली बहस को भी फिर से सामने लाती है। क्या लोकतंत्र का मतलब हमेशा यही होता है कि सांस्कृतिक स्तर नीचे जाएगा?
ये सवाल आज भी उठता है।
हाँ, मीडिया में, कला में, हर जगह। ट्रॉलप का जवाब शायद हमें पसंद ना आए, पर सवाल सोचने लायक है।
और ये हमें अपने खुद के सामाजिक तौर तरीकों पर भी एक आलोचनात्मक नजर डालने के लिए उकसाता है। सोचिए, अगर आज कोई बाहरी पर्यवेक्षक, कोई आधुनिक ट्रॉलप हमारे समाज को देखे तो वो क्या लिखेगा।
ये आत्मविश्लेषण का एक अच्छा तरीका हो सकता है। हम कैसे खाते हैं, कैसे बात करते हैं, सोशल मीडिया पर कैसे पेश आते हैं।
मेरे लिए इस किताब से सबसे बड़ा टेकअवे ये है कि किसी देश का असली चरित्र शायद उसके बड़े राजनीतिक दावों में उतना नहीं झलकता जितना लोगों के रोजमर्रा के व्यवहार, उनकी आपसी बातचीत, उनके घरों के अंदर के माहौल में झलकता है।
बिल्कुल। ट्रॉलप ने इसी घरेलू पहलू पर नजर डाली थी। और हाँ, मानना पड़ेगा कि किताब एक तरफा है, पूर्वाग्रहों से भरी है,
लेकिन फिर भी ये उस दौर के अमेरिका को, उसकी सांस्कृतिक कश्मकश को और यूरोप के नजरिए को समझने के लिए एक बेशकीमती दस्तावेज तो है ही।
ये लोकतंत्र, समानता और संस्कृति के बीच के उस मुश्किल रिश्ते पर सोचने को मजबूर करती है। क्या ये तीनों हमेशा एक साथ चल सकते हैं?
पाठकों को शायद ये समझना चाहिए कि सांस्कृतिक विकास सीधा नहीं होता। एक क्षेत्र में प्रगति जैसे राजनीतिक बराबरी शायद दूसरे क्षेत्र में जैसे पारंपरिक शिष्टाचार में कुछ कमी ला सकती है।
और सबसे जरूरी बात, दूसरों को परखते समय अपनी खुद की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के असर को पहचानना कितना जरूरी है,
ताकि हम ज्यादा संतुलित और निष्पक्ष हो सके।
और शायद एक आखिरी विचार श्रोताओं के लिए, ट्रॉलप ने जनमत के अत्याचार की बात की थी, बहुमत से अलग होने का डर।
हाँ,
क्या आज के सोशल मीडिया और 24/7 न्यूज के दौर में ये जनमत का अत्याचार एक नए, ज्यादा शक्तिशाली रूप में हमारे सामने नहीं है? क्या ये हमारी सोच और हमारी अभिव्यक्ति की आजादी को और भी ज्यादा सीमित नहीं कर रहा है? बस एक ख्याल।
सोचने वाली बात है। मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब
और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।